الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور اس میں ہم آیات نمبر 42 سے 44، 42 سے 44، ٹھیک ہے، ان آیات کا ترجمہ پڑھ چکے تھے اور خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، آدھی تقریباً ہم نے پڑھ لی تھی، پیج نمبر 587 ہے نا، 587 پیج نمبر کے اوپر تھے، معرف القرآن جلد نمبر 6 میں. تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا جو واقعہ چل رہا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھیں، اور نیت ان کی یہی تھی کہ بس سپردگی کے لیے ہی آئی ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے ہی آئی ہیں، لیکن وہاں پر آ کر کے پھر جو کانورسیشن ہوئی اور جو واقعات ہوئے، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو اس کا عرش تھا وہ اٹھوا کر کے یہاں پہ پہنچا دیا تھا، یا تو خود پہنچایا تھا یا یہ کہ اپنے ایک درباری آصف بن برخیہ جن کا نام آتا ہے، تو ان کے ذریعے سے تخت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچوا چکے تھے، اور اس تخت کے اندر تھوڑا بہت انہوں نے رد و بدل کروا دیا تھا ظاہری طور پر، تاکہ ملکہ بلقیس کی ذہانت کا امتحان لے سکیں کہ آیا وہ اپنے عرش کو دیکھ کر کے، یعنی اپنے تخت کو دیکھ کر کے پہچان جاتی ہیں کہ نہیں پہچان پاتی. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ. اچھا، یہ تو سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی، یعنی اس نے جو ہے پہچان لیا اپنے عرش کو، قالت کانہ ہو، یہ تو گویا کہ وہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اوتین العلم من قبلہا وکنا مسلمین، اور ہم کو تو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی کہ آپ یعنی اللہ کے نبی ہیں اور آپ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہیں، اور ہم تو پہلے ہی حکم بردار ہونے کی حالت میں ہی آپ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا کہ اور اس کو جو ہے نا روک جو رکھا تھا سبمیشن سے، اسلام لانے سے جو روک رکھا تھا نا، ما کانت تعبد من دون اللہ، ان چیزوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی کہ وہ پہلے عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلیم جو ہے نا وہ بتوں کے اوپر ڈال دیا، بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، یا جو ہے وہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، تو سورج نے اس کو روک رکھا تھا کیونکہ یہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی نا، ما کانت تعبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے نا، بلیم سورج پہ ڈال دیا یا بلیم بتوں پہ ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مسلمان ہو چکی. جب مسلمان ہو جاتا ہے نا بندہ، یعنی ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا پیار آتا ہے اس کے اوپر، ایسا پیار آتا ہے اس کے اوپر کہ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، ہے نا. حالانکہ بھائی سورج کو تھوڑی کسی کو روک سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے سے اور توحید سے، ہے، بت کو تھوڑی کسی کو روک سکتے ہیں توحید سے، ٹھیک ہے نا، لیکن محبت والا معاملہ جدا ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے عیب نظر نہیں آتے، بلکہ اس کے عیب جو ہے نا جان بوجھ کر کے انسان دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر عیبوں کو، ایمان والوں کی غلطیاں نا، اللہ تعالیٰ شیطان کے اوپر ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتوں کے اوپر ڈال دیں گے، ہے نا، یا کسی بھی طرح ڈال دیں گے، ایمان والوں کو صاف بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایمان لانا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کچھ قربان. ٹھیک ہے، انہا کانت من قوم کافرین، البتہ وہ تھی کافر قوموں کے درمیان تھی، ہے نا، یعنی اس کی صحبت نے اس کو بگاڑ دیا تھا، ہے نا. اب صحبت تھی، صحبت خراب مل گئی بیچاری کو، اب تو ٹھیک ہو گئی نا، اب تو توبہ کر لی نا، ہے نا. تو توبہ کر لی. دیکھیں، اسلام لانا یا ایمان لے آنا اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کر لینا، کفر اور شرک سے توبہ کر لینا. یہ توبہ، ایمان لانا از ایکول ٹو توبہ کر لینا کفر شرک سے، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے बस अल्लाह ताला फिर उसके बाद एक्सक्यूज आफ्टर एक्सक्यूज आफ्टर एक्सक्यूज, है ना, मेरा बंदा तो बेचारा, वो तो उसको दूसरों ने बिगाड़ दिया था, उसको तो फलाने ने बिगाड़ दिया था, उसको फलाने ने बिगाड़ दिया था, ठीक है। कीला लहा उदखुल सरह, उसके बाद फिर इस विजिट का जो है ना वो अगला पोर्शन स्टार्ट हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने या उनके किसी दरबानी ने उससे कहा कि इस महल में दाखिल हो जाओ, सरह में दाखिल हो जाओ। तो जब वो सरह में दाखिल हुई तो उसने देखा कि ये तो यानी वो है, ठीक है, शीशे का महल, शीश महल हमने सुना था, बल्कि देखा भी बचपन में गए थे एक दफा शाही किला लाहौर के अंदर जो है, तो वहां पर जो है ना वो मुगल बादशाह साहब ने भी जो है वो शीश महल बनाया, बना के रखा हुआ है ना, तो वो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े और इस तरह से एक तालाब वगैरह वहां पर भी बना हुआ है, ठीक है। तो वहीं से गालबन उनको भी आइडिया आया होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तरह का शीश महल बनाया, मैं भी कोई शीश महल बनाने की कोशिश करूँ। तो जाहिर वो तो उस तरह का नहीं बना सकते थे जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। तो खैर वो हम पढ़ते हैं फिर खुदा से तफसीर से मजीद आगे कि इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि अलावा एजाज और शान नबूवत दिखलाने के उसको जाहिरी शान सल्तनत भी दिखला दी जाए ताकि अपने को दुनिया के एतबार से भी अजीम ना समझे, ठीक है। यानी वर्ल्डली टेक्नोलॉजी, मटेरियल क्राफ्ट्समैनशिप, है ना, इसमें भी हम इससे आगे, ठीक है ना, दीन में तो हम आगे ही हैं ही, रूहानी तौर पर तो हैं ही आगे, लेकिन मादी तौर पर भी हम इससे आगे हैं। तो क्या किया कि इसलिए एक शीश महल बनवाकर उसके सहन में हौज बनवाया और उसमें पानी और मछलियां भरकर उसको शीशे शीशे से पाट दिया, यानी उसके ऊपर एक शीशा का फ्लोर, ग्लास फ्लोर बना दी, है ना। आप गए होंगे शायद ऐसे एक्वेरियम्स के अंदर, गालबन दुबई के एक्वेरियम में भी है और हमने शायद न्यूयॉर्क के एक्वेरियम में भी देखा था कि आप चल रहे हैं उसके ऊपर और नीचे आपको मछलियां नजर आ रही हैं, ठीक है। तो लेकिन इतना साफ सुथरा ये नहीं बना सकते जैसे कि उन्होंने बनवाया था, जाहिर है वो तो जिन्नों से काम करवाते होंगे। तो शीशा ऐसा शफाफ था कि जाहिर नजर में नजर ना आता था, और वो हौज ऐसे मौके पर था, मौके का मतलब ऐसी जगह पर था कि उस महल में जाने वाले को ला महाला उस पर से अबूर करना पड़े, है ना, यानी रास्ते के अंदर ही वो हौज था, आप इधर उधर से होके नहीं जा सकते थे। चुनाचे इस तमाम सामान के बाद बिल्कीस से कहा गया कि इस महल में दाखिल हो, ठीक है ना। मुमकिन है वही महल कयाम के लिए तजवीज किया गया हो, यानी यहीं पे, यही आपका ये रेस्ट हाउस जो है वो यहीं पर है, ठीक है, आपका होटल रूम इसके अंदर ही है। गर्ज वो चनी तो राह में हौज आ गया, ठीक है, तो जब इसका सहन देखा तो उसको पानी से भरा हुआ समझा, यानी उस पानी के ऊपर जो शीशा था ना वो तो नजर ही नहीं आ रहा था, नीचे का पानी नजर आ रहा था। तो चूंकि करीने से पायाब गुमान किया, ठीक है, यानी उन्होंने ये गुमान किया कि भाई मेरे कदम जो है ना वो इसमें से होते हुए फिर जाएंगे आसपास के सारे मामलात। करीना करीना का मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों से फिर आपको कोई बात समझ में आती है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जैक्टली जो वो चीज है वो नजर नहीं आ रही तो फिर आप करीने से बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सियाको सबाक, है ना, इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के वाकयात, उन सब से आप बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने करीने से क्या गुमान किया कि ये जो है ना वो पायाब गुमान किया, पायाब का लफ्ज एक्चुअली मैं देख नहीं सका, गालबन पानी से भरा हुआ गुमान किया इसको, इसलिए उसके अंदर घुसने के लिए अपने दामन उठाए, जैसे पांचा उठाते हैं ना नीचे से। तो अब औरतें जो होती हैं वो तो इस तरह की शलवार मर्दों वाली तो नहीं पहन रही होती ना, जैसे पैंट्स वगैरह, उनके तो लॉन्ग स्कर्ट, जो पुराने जमाने के लिबास से आज तक भी औरतें लॉन्ग स्कर्ट किस्म की चीज पहन रही होती हैं, चाहे आजकल का बाया वगैरह भी ऐसे ही होता है। तो दामन से, यानी दामन तो बिल्कुल सामने वाली जगह होती है ना, तो वहां से उसको आप उठाएं तो नीचे से आपके पैर भी जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने दामन को उठाए, दामन को उठाया और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी, ठीक है, ताकि कपड़े गीले ना हो। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो महल है जो सब का सब मार सहन शीशों से बनाया गया है और ये हौज भी शीशे से पिटा हुआ है, यानी शीशे ही इसके अंदर जुड़ा हुआ है हर तरफ, तो दामन उठाने की आपको जरूरत नहीं है इस वक्त। इस वक्त बिल्कीस को मालूम हो गया कि यहां पर दुनियावी सनतकारी के अजायब भी ऐसे हैं जो आज तक मैंने आंख से नहीं देखे। तो उनके दिल में हर तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत पैदा हो गई और बेसाख्ता कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अब तक अपने नफ्स पर जुल्म किया था कि शिर्क में मुब्तला थी, और मैं अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ यानी उनके तरीक पर होकर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई। व असलम तो मा सुलेमाना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की यानी हमराही के अंदर मैं रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लेकर के आती हूँ। ठीक है, क्या मतलब कि दूसरे बुतों की इबादत मैं छोड़ती हूँ, दूसरी मखलूक की इबादत मैं छोड़ती हूँ, और जैसी अल्लाह की इबादत सुलेमान अलैहिस्सलाम बताते हैं करने के लिए, मैं वैसी ही इबादत के तरीकों को इख्तियार करती हूँ, यानी तौहीद। ठीक है, ला शरीक अल्लाह वाली वाली इबादत। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो एक बात जहन में आती है कि भाई यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के ऊपर असर डालने के लिए दुनियावी शान और शौकत का भी एहतमाम किया। ठीक है, तो क्या अब हमें भी किसी को दीन की तरफ लाने के लिए दुनियावी शान शौकत का एहतमाम करना जरूरी है ना? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एहतमाम किया था, तो हमें भी एहतमाम करना चाहिए। ठीक है ना, हाँ या ना? ठीक है, तो इसके ऊपर आजकल के पढ़े लिखे सेक्युलर सेक्युलरली एजुकेटेड जो अवाम उन्नास हैं, जो दीनदार भी फिर बन गए, या शुरू से दीनदार थे या बाद में दीनदार बन गए, जैसे भी हैं, लेकिन जिनकी बैकग्राउंड जो है वो सेक्युलर एजुकेशन होती है, तो उनमें से अक्सर का जो है ना फिर वो ये एक मिजाज बना होता है, या एक सोच बनी हुई होती है कि दुनिया में अगर हमें इस्लाम को गालिब करना है और लोगों को इस्लाम की तरफ रागब करना है, तो हमें जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना वो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अब शायद कोई ऐसा शख्स अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाले वाकये को पढ़े तो कहे, हाँ देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो यही किया था। मादी तरक्की जो उनके पास अल्लाह ताला ने उनको दी हुई थी, या जो भी थी उनके पास थी, है ना, तो उन्होंने मादी तरक्की को यूज किया ना मलके बिल्कीस के ऊपर जो है वो असर डालने के लिए। ठीक है, यानी मकसद उनका क्या था कि मलका बिल्कीस जो है वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, और मलका बिल्कीस के इस्लाम में दाखिल होने से फायदा क्या होगा कि उसका पूरा का पूरा जो मुल्क था, जो बहुत आलीशान मुल्क था, यमन, है ना, कितना बड़ा तो उसका अर्श था, और जाहिर है अर्श इतना बड़ा होगा तो फिर सल्तनत कितनी बड़ी होगी, है ना, और कितना बड़ी उसकी आर्मी थी कि उन्होंने कहा था जी उली कुवत, है ना, बासिन शदीदिन, हम तो बहुत बड़ी जो है वो लड़ाई के अंदर बड़े चैंपियन है, तो यानी बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की सल्तनत थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गोया के दुनिया में इस्लाम फैलाना चाह रहे थे जैसे हम फैलाना चाहते हैं, है ना, हम भी तो चाहते हैं ना कि सारे लोग मुसलमान हो जाएं, अमेरिका भी मुसलमान हो जाए और यूरोप भी मुसलमान हो जाए, ऑस्ट्रेलिया भी मुसलमान हो जाए, बल्कि चाइना भी मुसलमान हो जाए, है ना। तो अब इसका तरीका जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला इख्तियार करना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस जमाने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो जैसी भी थी तो ना भाई, ये शीशे का जो महल बना लिया ऐसे ही तो नहीं बना लिया था। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा अगर हम आपसे पूछें, ताकि आपकी भी थोड़ी सी क्लास पार्टिसिपेशन रहे। तो फरमाते हैं कि सरदारों को दावत देने में मसलहत से काम लिया जा सकता है, खास एहतमाम करना। सरदारों को दावत देने में मसलहत से काम लिया जा सकता है, खास एहतमाम करना। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने एहतमाम किया था। ठीक है, तो क्या हमें भी एहतमाम करना चाहिए? हमें भी इस किस्म के कंस्ट्रक्शन मार्वल्स हैं, जैसे कि स्पेन के अंदर है ना अल्हम्ब्रा का जो, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि देखो मुसलमानों ने कितनी जबरदस्त इमारतें बनाई थी, है ना, वो ताजमहल जो है वो बनाया था, और जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो मीनार बनाया था, और स्पेन के अंदर जा करके देखो तो ओहो क्या जबरदस्त किस्म के इमारतें मौजूद हैं, अल्हम्ब्रा पैलेस है। तो हम यानी 21st सेंचुरी मुस्लिम्स
नहीं,
भी,
मुसलमान नहीं।
ठीक है,
हाँ
आप जरा म्यूट कर लें, जदाकर, तो नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए भाई? सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे क्या? उनकी सुन्नत पे अमल नहीं करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? या अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों का सहारा नहीं लिया। ओके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया। तो भाई फिर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो रसूल थे ना, तो उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, कोई हराम वराम तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करना कब से हराम हो गया? हराम तो कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी ने हमारे हमारे मौलवी साहब ने कभी नहीं कहा, शेख साहब ने कभी नहीं कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ना जो है वो हमारे दीन में मना है। हमने तो ये सीखा ही नहीं कभी, ठीक है। तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए? लोगों के मरातब के हिसाब से एहतमाम करना चाहिए, लोगों के मरातब के हिसाब से एहतमाम करना चाहिए। जुमला वैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, इस जुमले को अगर किसी और तरीके से समझने की कोशिश करें, आफ्टर फर्स्ट डूइंग तौबा फ्रॉम सिंस एंड कंप्लीटिंग फराइज। अच्छा, तो हमें करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मेहनत, लेकिन आफ्टर डूइंग तौबा फ्रॉम आवर सिंस एंड कंप्लीटिंग द फराइज। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, है ना। हाँ, गुनाहों से तौबा करके और अपने फराइज को पूरा करके, जो कि एक ही चीज है, क्योंकि फराइज को पूरा करना ही गुनाहों से तौबा करना होता है। यानी तौबा करके फिर आप, यानी झूठ बोलना गुनाह है तो सच बोलना फर्ज भी तो है ना, तो सच बोलना शुरू कर दें, झूठ से तौबा कर लें। नमाज छोड़ना गुनाह है तो नमाज पढ़ना जो है वो फर्ज है, ठीक है। तो फराइज पूरे करें, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बस थोड़ी सी हम बात ये करना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला लिखा, ऊपर में उर्दू में भी यही जुमला था तकरीबन, सरदारों को दावत देने में मसले से काम लिया जा सकता है, खास एहतमाम करना, ठीक है ना। हम कब कह रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया था, उन्होंने तो बिल्कुल सही काम किया था, लेकिन क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारा सवाल ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो लिखा कि लोगों के मरातब के हिसाब से एहतमाम करना चाहिए, वो भाई लोगों के मरातब के हिसाब से एहतमाम करना चाहिए, अपने मरातब के बारे में क्या ख्याल है कि अपने मरातब के हिसाब से एहतमाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी अपनी जेब नहीं देखनी, दूसरों की जेब देखनी है, उनकी जेब बड़ी, बहुत बड़ी जेब है तो उसके हिसाब से हमें एहतमाम करना चाहिए। भाई उनकी जेब के हिसाब से एहतमाम कर रहे हैं, अपनी जेब भी तो देखो, अपनी जेब में इतना है कि उनके लिए हिसाब, उनके हिसाब से एहतमाम कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जेब कितनी बड़ी थी, राइट। मलका बिल्कीस की जेब तो देख लिया आपने, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जेब नहीं देखी, राइट। हालात के हिसाब से असबाब इख्तियार करना चाहिए जी, यानी अपने हालात पहले देखें, दूसरों के हालात तो देख रहे हैं लेकिन अपने हालात भी तो देखें, है ना। पहले अपने हालात का इदराक करें, हम किधर खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं है, फिर उसके बाद दूसरे के हिसाब से आप काम करेंगे ना। पता चला वो तो आपने बादशाह सलामत को दावत तो दे दी, अपने घर के अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर बादशाह सलामत के लिए आप कहाँ से जो है वो महल बनाएंगे जब अपने पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले जो है ना वो अपना हिसाब करना होता है, ठीक है ना। इसी को हमारे मशायख कहते हैं, बल्कि अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा है ना, मशायख की बात बाद में करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, पहले अपने मन में तो डूबो, राइट, पहले अपने अंदर तो झांक करके देखो, व्हाट आर यू केपेबल ऑफ, ठीक है ना, फिर उसके बाद अगले बंदे के हिसाब से काम करना यार, राइट। उसी तरीके से हमारे मशायख फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर जो है ना असल हकीकत तो छुपी हुई है, अपने नफ्स को तो पहचाना नहीं, दूसरे की फिक्र पड़ी हुई है, उसके साथ कैसा मामला करना चाहिए, उसके साथ ये मामला करना चाहिए, उसके साथ वो मामला करना चाहिए। वफी अनफुसिकुम, अबे अपने मुल्क, अपने अपने अंदर तो झांक के देखो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तो जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं ना, तो पहली बात तो ये हमारे पास दुनियावी असबाब है नहीं, ठीक है ना। जब है नहीं तो फिर कैसे हिसाब, कैसे जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े हुए लोगों की कोई कमी नहीं है, है कमी? आप में से कितने हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है माशाल्लाह मास्टर्स किए हुए हैं, और बैचलर्स तो बहुत सोने किया हुआ होगा, मास्टर्स भी बहुत सारे निकल आएंगे 45 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर, और शायद एक आध तो खैर नहीं, कई जो है वो पीएचडी भी शायद निकल आए, है ना। क्लास में चलो 45 लोग हैं, लेकिन हमारे अपने जानने वाले दीनदार मुसलमानों के अंदर पीएचडी की कमी नहीं है, है ना। और वो पीएचडी खाली है नहीं कि नौ के डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नहीं, ऐसे ऐसे पोजीशंस पे मौजूद हैं अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, और बीच में इंडिया पाकिस्तान भी शामिल है उसके अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी रिसर्च लैब्स बड़ी बड़ी मौजूद हैं, और उनके अंदर मुसलमान पीएचडीज और एमफिल्स और मास्टर्स और है ना, एक से एक साइंसदान कराची के, वो किसी ने वीडियो भेजी थी कि कराची के करीब जो है ना वो ड्रोन फैक्ट्री बनाई हुई है जीनियस पाकिस्तानियों ने, और ऐसे ड्रोन्स बना रहे हैं कि जो कि सारे दुनिया के अंदर वो इम्पोर्ट कर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IQ, इन सब की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये बेवकूफी की बातें होती हैं कि जी हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना पढ़ पढ़ करके पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन वही खाने को पैसा, खाने को जो है वो अल्लाह का शुक्र है खाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन इकोनॉमी के हालात आप सबको पता है ना, भीख मंगे कहीं के है ना, और परले दर्जे के झूठे और हर किस्म की जो है वो खराफात और हर किस्म की बुराइयां इंडिया के मुसलमानों के अंदर भी और पाकिस्तान के मुसलमानों में उससे भी ज्यादा बढ़ करके। ठीक है, तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपने क्या कर लिया मतलब? तो भाई हम जो है ना वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल बनाने की बजाय, ठीक है ना, पहले तो हम ये देखें ना कि जो हमारे पास है उसका हमारा हिसाब किससे ज्यादा मिलता है। हमारा हिसाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दुनिया की बादशाहत थी, जिन्नों की, परिंदों की, चरिंदों की, दरिंदों की, सबकी बादशाहत थी। हमारे पास है किसी चीज की बादशाहत? हमारे पास तो किसी चीज की बादशाहत नहीं है। तो भाई जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे है ना, तो उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के नबी थे, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारी हमारे लिए यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे बड़ी मिसाल बयान फरमाई है नबी अलैहिस्सलाम के बाद, लकद कान लकुम फी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना, नबी अलैहिस्सलाम के लिए के अंदर जो उसवा हसना है हमारे, है ना, हमारे लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए उसवा हसना किसको बनाया था अल्लाह ताला ने? मूसा अलैहिस्सलाम को, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात हर जगह मौजूद हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो एक दो जगह पे मौजूद है खाली जिक्र। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, है ना? उन्होंने फिरौन को मरऊब करने के लिए किस चीज का सहारा लिया था? एक मौजजे का सहारा लिया था। उन्होंने कौन सा महल बनवा दिया था, है ना, कि वो भी तो अल्लाह के नबी थे ना, है ना, उनके लिए भी तो अल्लाह ताला वो तो बात करते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह दो चार जिन मुझे भी दे दीजिए, है ना, तो मैं भी कुछ महल शहल बनाऊं ताकि मैं फिरौन को मरऊब कर सकूं, है ना। उन्होंने तो नहीं महल शहल बनवाया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई महल शहल बनवाया? ठीक है ना भाई, नहीं थे, अल्लाह ताला ने इस किस्म की नहीं दी थी उनको। तो हम एक ही तरीके से इस चीजों को नहीं लेकर के चल सकते, हमें अपने हिसाब से चीजों को लेकर के चलना है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास मसले हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी के मसले नहीं है, हमारे पास ये है कि हम करप्शन, है ना, कहते हैं ना कि करप्शन ले डूबा पाकिस्तान को, तो भाई करप्शन को क्यों नहीं ठीक करते? अपने जात से शुरू करो ना, पूरे मुल्क को ठीक करने से पहले अपनी जात से शुरू करें, फिर उसके बाद जो है वो अपने औलाद के अंदर कोशिश करें कि जी उनके अंदर करप्शन जो है वो क्रीप करके ना आ जाए, है ना, फिर उसके बाद जो है वो बात करें आप मुल्क की और अमेरिका की और इसराइल की और यूरोप की, है ना, अपने आप अपने खानदान अपने घराने को छोड़ करके हमें सारी दुनिया की फिक्र पड़ी हुई है। ठीक है, तो इनका जो है यानी इनके वाक्य से हमने तो भाई यही सीखा है, दीन और दुनिया दोनों में करप्शन है ना, दीन में भी करप्शन दुनिया में भी करप्शन, अब कर लो जो करना है। ठीक है, चलें मारूफ मसाइल पढ़ लेते हैं कि क्या बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी? तो आयत मस्कूरा में बिल्कीस का वाक़ इसी पर ख़त्म हो गया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई थी। ठीक है, तो बहरहाल तो मारूफ मसाइल में बस इसी एक हेडिंग को हजरत ने रखा है, बाकी तफसीलात कोई मारूफ मसाइल में जिक्र नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या हालात पेश आए? कुरान करीम ने इससे सुकूत किया है ना, यानी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करी। यही वजह है कि किसी शख्स ने जब अब्दुल्ला इब्ने उयैना से पूछा कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह कर लिया था, तो उन्होंने फरमाया कि उसका मामला इस पर खत्म हो गया, असलम तो मा सुलेमाना लिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आयत के ऊपर इनका किस्सा खत्म। मतलब ये था कि कुरान मजीद ने यहीं तक इसका हाल बयान किया है, इसके बाद का हाल बतलाना कुरान ने छोड़ दिया, तो हमें भी इसकी तफ्तीश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर इब्ने असाकर ने हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि इसके बाद बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई और उसको उसके मुल्क पर बरकरार रखकर यमन वापस भेज दिया। हर महीने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज क़याम फरमाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिए यमन में 3 उम्दा महलात ऐसे तैयार करा दिए थे कि जिसकी मिसाल और नज़ीर नहीं थी, है ना। अब ये तफसील कहाँ से आई उनके पास? कुरान मजीद में तो उसका जिक्र नहीं है और कोई हदीस मुबारक भी कोई कोट नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि कोई बनी इसराइल की रिवायात होंगी कि जिससे कि उनको ये बात पहुंच गई होगी। और चूंकि इसके अंदर कोई ऐसी ऐसी खिलाफ रिसालत कोई बात नहीं है और दीन के उसूल के खिलाफ कोई बात नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम महीने में 3 दिन जो है वो अपनी बेगम के पास जाया करते थे, है ना, तो बयान कर दिया उन्होंने इस बात को आगे। ठीक है, तो इसराइली रिवायात के बारे में हमारे उलमा का यही मौकफ है कि अगर कोई खिलाफ दीन बात उसमें ना हो तो उसको बयान करने में हर्ज नहीं है। ठीक है, बाकी उनके पास जो है वो उड़न कठोला खटोला भी होगा, जाहिर है उसी को पता, वो करते थे अपने, उनका तो पूरा अरशी बल्कि हवा में उड़ता था, तो महीने में 3 दिन गुजारना उनके लिए क्या मुश्किल काम था। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि पड़ोस में जो है वो गया कि आप चले गए अपनी दूसरी बेगम के पास। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो बेगमात के बारे में वैसे भी बहुत कुछ हदीसों में है कि मतलब कितनी 100 100 बीवियां होती थी, है ना। तो वो बात तो खैर हदीस से साबित है अच्छी खासी तरीके से। अच्छा ठीक है, कोई और अगर सवाल हो या कमेंट हो उसके ऊपर तो आप लिख दीजिएगा, बाकी हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालिहन अने अबुदुल्लाह फ इज़ाहुम फरीकान यख्तसिमून। के अच्छा, तर्जुमा साथ साथ अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर वक्त खत्म हो जाएगा। तो और तहकीक वलकद और तहकीक के अरसलना इला समूदा, हमने भेजा समूद की तरफ, अखाहुम सालिहा उनके भाई सालेह को, यानी सालेह अलैहिस्सलाम जो थे ना वो कहीं बाहर से माइग्रेट करके कौम समूद में आके सेटल डाउन नहीं हुए थे, बल्कि वहीं पर पैदाइश हुई थी, वहीं पे पले बड़े थे। तो उन्होंने जाके क्या कहा, अन के उबुदुल्लाह, है ना, अल्लाह की तुम इबादत करो। फ़ैज़ाहुम फरीखाने फरीकाने यख्तसिमून, तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, है ना, उबुदुल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, ठीक है, तो क्या हुआ, इजा हूं, एकदम से उसका नतीजा क्या निकला। इजा जो है मुफाजातिया होता है ना, जो कि यानी जिसके बाद इसम आ जाता है, तो एकदम से क्या उसका कॉन्सिक्वेंस, एकदम से क्या रिजल्ट निकला, फरीकाने वो दो फरीकों में बट गए, यख्तसिमून दो जो एक दूसरे से आर्ग्यू करते थे यानी इख्तलाफ करते थे। अब ये दो फरीक जो थे ना, ये वही फरीक थे, मोमिन और काफिर वाले फरीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोमिन और काफिर वाले फरीक, तो कसूर था इन दोनों का नहीं, यानी हर कौम के दरमियान हर तफरीक गलत नहीं होती, ठीक है ना। ये जो है ना कि बस किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, सब जो है वो गले मिलकर के सारी जिंदगी गुजारनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हक और बातिल की तफरीक होनी जरूरी है ना। अगर सारे बातिल के ऊपर जमा हो गए तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर हक और बातिल वाली तफरीक होती है ना किसी कौम के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ बुराई इतनी ही है कि बातिल वाले लोग क्यों हैं, वो भी तो हक में ही हो जाने चाहिए थे, ठीक है, उनको भी तो हक ही की साइड पे होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं हुए तो भाई जाहिर सी बात है अब दो फरीक बन जाएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मोमिनों को जो है वो अपना ईमान कॉम्प्रोमाइज करके जो है ना वो कौम के अंदर फूट नहीं पड़ने पड़ने देना चाहिए था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर वो भी सारे जहन्नुम में जाएंगे, क्या ना, काफिरों के साथ वो लोग भी जहन्नुम में चले जाएंगे। काला तो उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तस्तअजिलून, क्यों जल्दी करते हो, क्यों उजलत करते हो तुम मांगने में, बिसैया बुराई को मांगने में तुम क्यों जल्दी करते हो, कबल अल हसना, है ना, भलाई से पहले तुम क्यों जल्दी करते हो, ठीक है ना, मतलब वाई आर यू सो एंशियस फॉर अल्लाहज अजाब, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा तहम्मुल से, मतलब जरा सा गिव इट सम टाइम, बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। जल्दी मत मांगो कि अदाब लेकर के आओ, दिखाओ जरा कौन सा वाला अदाब है जो तुम हमसे बार बार हमें डराते रहते हो, धमकाते रहते हो अदाब के बारे में, लेकर के आओ उस अदाब को, नहीं इस तरह मत करो, टेक इट ईजी, है ना। लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ठीक है ना, लौला तस्तग़फिरून अल्लाह, तो तुम जो है वो अल्लाह ताला से मगफिरत क्यों नहीं तलब करते, है ना। इस्तग़फरा यस्तग़फिरु का मतलब मगफिरत तलब करना, जिस तरह इस्तअजला यस्तअजिलु का मतलब है उजलत तलब करना, है ना, उसी तरह इस्तिग़फार तलब करना, मगफिरत तलब करना, ठीक है। तो लौला क्यों नहीं तुम माफी मांगते हो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि वो तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, या शायद कि वो तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, ठीक है ना। अगर तलब करोगे गुनाह छूट नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला से तुम मगफिरत मांगते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करते रहेंगे, है ना। हो सकता है रहम फरमा के तुम्हें फिर ईमान की तौफीक अता फरमा दें। तो उस बजाय इसके कि माफी मांगो अल्लाह ताला से, तुम जो है वो अदा मांगना शुरू हो गए। कालू, तो उन लोगों ने जवाब दिया, तैयरना बिका व बिमम माक, है ना, ये जो नहुसत जिसका तुम हमसे हमें डराते रहते हो ना इसके बारे में, ये तो तुम्हारे साथ है, और ये जो तुम्हारे साथ जो लोग हैं ना ये उनके साथ है, यानी तुम और तुम्हारे सहाबा, ठीक है ना, उनके साथ है ये तैयरना, यानी हम ये जो नहुसत हमारे पास आई हुई है ना, ये तो तुम्हारी वजह से, ठीक है ना, यानी ये जो हमारे कौम के अंदर फूट पड़ गई है, भाई भाई जो है वो आपस में दुश्मन हो गए हैं, और बाप बेटा आपस में दुश्मन हो गए हैं, है ना, जैसे कुरैश के अंदर हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद क्या हुआ था, भाई भाई आपस में दुश्मन हो गए थे, बाप बेटा दुश्मन हो गए थे, है ना, उसी तरह यहाँ पर भी हो गया था। तो कहते हैं ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है। कौला, तो सवाल अलैहि सलाम जवाब दिया, कायरुकुम इंद अल्लाह, तुम्हारी बुरी किस्मत या तुम्हारी नहुसत वगैरह जो है ना, ये तो अल्लाह ताला के पास है, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम लोग जो है ना वो एक यानी ऐसी कौम हो कि जिसको आजमाइश में डाला गया है मेरे जरिए से। नबी जो होता है ना ये कौम की आजमाइश भी होता है, एक तो कौम की हिदायत का सबब होता है ना, लेकिन कौम के लिए आजमाइश भी तो होता है ना, कि भाई कौम में कौन जो है वो इसको माने और कौन इसको नहीं माने, तो ये तो आजमाइश है, यही तो टेस्ट है, ठीक है। तो तुम्हें गोया कि मेरे मेरे जरिए से तुम्हें आजमाया जा रहा है, ठीक है ना, तो तुम एक ऐसी कौम हो जिसको कि आजमाइश में डाला गया है। वकाना फिल मदीना थे तिस अतु राहतिन, और थे इस शहर के अंदर जिसमें ईसा अलैहि सलाम को भेजा गया था, बतौर नबी को उठाया गया था, जिस शहर में वहां पे 9 बंदे थे, तिस अतु राहतिन 9 शख्स थे, युफ्सिदून फिल अर्ध वला युस्लिहून, ये जमीन के अंदर फसाद मचाते थे और इनके अंदर कोई खैर नहीं थी, है ना, यानी सुलह वगैरह नहीं करते थे बल्कि जमीन में फसाद मचाते थे। कालू तकासमु बिल्लाही, तो उन 9 लोगों ने ना गोया के आपस में बैठ करके प्लानिंग करी और कहने लगे, तकासमु बिल्लाही, के आपस में कसम खाओ एक दूसरे के सामने जो है ना, वो स्वेर है ना, बाय अल्लाह, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम खाओ। क्या मतलब भाई, ये अल्लाह, ये बिल्कीस की तरह नहीं थे कि ये सूरज की परस्तिश करते थे, बल्कि बिल्कीस भी जो है ना अल्लाह ताला को तो सब जानते हैं, सब जानते हैं अल्लाह ताला को, बल्कि मानते भी अल्लाह ताला को, है ना, जैसे कुरैश मक्का अल्लाह ताला को जानते भी थे, अल्लाह ताला को मानते भी थे, सारा मसला जो आके अटकता है वो तो नबी के साथ अटकता है, नबी को नहीं मानते, नबी की नहीं मानते, ठीक है ना, इनके साथ भी यही मसला था, अल्लाह की कसम खा रहे हैं, यानी अल्लाह पर ईमान रखते थे, है ना, वो जो कुरान मजीद में आया या दूसरे मुकामात पे जो हम कहते हैं ना आमन तो बिल्लाही, तो आमन तो बिल्लाही का मतलब ये नहीं होता कि लोग अल्लाह पर ईमान रखते नहीं है कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है, नहीं रखते हैं ईमान, ठीक है। तो आमन तो बिल्लाही का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, ठीक है ना, वरना अल्लाह पर अबू जहल भी ईमान रखता था और अल्लाह ही से दुआ मांगता था, ठीक है ना, लेकिन नबी के नहीं मानता था, इस वजह से काफिर ठहरा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लोग इसी तरीके से काफिर ठहरे, क्योंकि साले अलैहि सलाम को नहीं मानते थे, अल्लाह को तो मानते थे। तकासमु बिल्लाही, तो इन दोनों ने, इन 9 लोगों ने जो है ना वो आपस में ये ठानी कि हम अल्लाह के ऊपर कसम खाते हैं, लनु बैयनन्नहु व अहलहु लयुबैयतन्नहु, ठीक है, कि बाता ये बीतू, रात के वक्त जो काम किया जाता है ना उसके लिए बाता का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कि हम जरूर बिल जरूर जो है ना वो रात के वक्त जा पड़ेंगे, यानी हमला करेंगे, वह अहलहू उसके यानी हु यानी साले अलैहि सलाम के ऊपर, वह अहलहू और साले अलैहि सलाम के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर, सुम्मा, और फिर उसके बाद जब हम उनको मार वार करके फारिग हो चुके होंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, सुम्मा लनकूलन्ना लिवली ही, हम जरूर बिल जरूर जो है ना उसके वली से जाकर के कहेंगे, मा शहिदना महलिका अहली ही, है ना, वी डोंट नो, हमने नहीं देखा कि साले के घर वालों को किसने जो है वो हलाक कर दिया, वह इन्ना लसादिकून, और हम लोग तो सच्चे हैं, इस तरह से हम जा करके उसके वली के पास स्टेटमेंट दे देंगे, है ना, कि हमने नहीं देखा कि भाई किसने मारा इन लोगों को, और हम लोग तो सच कह रहे हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हजरत ने आगे लिखा है तफसीर में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इन लोगों ने तो बैठ करके प्लानिंग कर ली, है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह मकरू मकरन, और इन लोगों ने मकर कर लिया, प्लानिंग कर ली। वह मकरना मकरन, और हमने भी प्लानिंग कर ली, हमने भी एक प्लान बना लिया। किसने प्लान बना लिया भाई, कोई बताएगा यहाँ पे किसने प्लान बनाया? काफिरों ने तो प्लान बनाया, है ना, तिसअतु राहतिन ने प्लान बनाया। तो वो मकरू मकरन, उन नौ फसादियों ने प्लान बना लिया। और यहाँ पे किसने प्लान बनाया, आपने ये साले अलैहि सलाम क्यों नहीं लिखा, साले अलैहि सलाम ने प्लान नहीं बनाया, या साले अलैहि सलाम के जो हिमायती थे सहाबाए कराम थे साले अलैहि सलाम, उन्होंने क्यों नहीं प्लान बनाया? नहीं, अल्लाह ने प्लान बनाया। ठीक है ना, साले अलैहि सलाम को तो पता भी शायद नहीं था कि ये क्या प्लान बना रहे हैं, है ना। लेकिन अल्लाह ताला को पता भी होता है, और अल्लाह ताला जो है ना वो दुश्मनों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अल्लाह ताला भी अजीब मामला करते हैं ईमान वालों के मामले में, कि फरमाते हैं कि हम प्लान करते हैं, है ना। जिस तरह से एक और जगह कुरान मजीद में आप लोग सुनते रहते हैं, जो पहले से सुन रहे हैं साहब, जिसको कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वयम कुरून, है, और इन लोगों ने प्लानिंग करी काफिरों ने, और उसके मुकाबले में ये नहीं फरमाते और मेरे नबी ने भी प्लानिंग करी, या मेरे मेरे ईमान वालों ने भी प्लानिंग करी, नहीं, बल्कि फरमाते हैं वयम कुरुल्ला, और अल्लाह ने प्लानिंग करी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन प्लान करने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिन पहले से पता चला कि जी उहद के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने वाले हैं, उहद वाला जो गजवा होने वाला है, काफिर जो है वो आने वाले हैं, तो पता चला। बल्कि 3 दिन पहले तो उन्होंने कासिद रवाना किया था अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने, नबी अलैहिस्सलाम को जुमेरात को मिला है ना वो कासिद, और जुमे की सुबह से जो है वो सारी डिस्कशन शुरू हुई है, और जुमे की शाम को जो है वो उहद रवाना हो गए। कितनी प्लानिंग करी, कितने दिन प्लानिंग करी, आधे दिन प्लानिंग करी, मशवरा किया, है ना, कि कैसे हमें उसको निपटना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नबी ईमान वालों के बिहाफ पे जो है ना वो अल्लाह ताला प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला की प्लानिंग जो होती है ना उसका काफिर मुकाबला नहीं कर सकते। ईमान वालों की प्लानिंग का तो कोई मसला नहीं है, काफिर जो है वो मुकाबला कर सकते हैं और कर भी लेते हैं अगर ईमान वाले प्लान करते हैं तो। ठीक है, वहुम ला यशउरून, और इस प्लानिंग का उनको कुछ पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला भी प्लान कर रहे हैं। फंजुर कैफ काना आकिबतु मकरहिम, बस देख लीजिए कैफ काना, क्या हशर हुआ, आकिबतु मकरहिम, उन लोगों के प्लानिंग का। ठीक है, अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन, कि हमने बेशक हलाक कर डाला उन सबको और उनके तमाम के तमाम कौम वालों, जो काफिरों पर मुश्तमिल थी, हमने सबको हलाक कर डाला। अल्लाह वाले अपने काम अल्लाह के हवाले सुपुर्द कर देते हैं और मुराकबे में बैठ जाते हैं, नहीं मुराकबे में नहीं बैठ जाते, सुपुर्द बेशक करते हैं, असबाब इख्तियार करते हैं, लेकिन एक हद तक असबाब इख्तियार करते हैं, असबाब के पीछे दीवाने नहीं हो जाते। ठीक है ना, तो आपका जुमला कंप्लीट या आज ऐसे करेगा कि अल्लाह वाले अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करके मुसल्ला नहीं संभाल लेते खाली। हाँ, अगर असबाब बिल्कुल हाथ में नहीं है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है असबाब इख्तियार करना, फिर सिर्फ मुसल्ला संभालते हैं, फिर जो है वो हाथ उठा करके जो है वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हैं, या ये कि जो असबाब थे उनके पास मौजूद उनका एहतमाम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रात को जाग करके अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, जैसे सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने, है ना, असबाब इख्तियार कर लिए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सामने रोना गड़गड़ाना। वो अपने उनके जो शेख साहब थे सलाउद्दीन अयूबी के, है ना, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, असबाब वगैरह इख्तियार कर लिए, अब उसके बाद जो है वो पहाड़ के ऊपर बैठ करके मिट्टी डाल रहे हैं अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर से टोपी भी उतार दी, और ऐसे दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह मैं कुत्ता, मैं तो कुत्ता हूँ, है ना, मेरे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो ईमान वाले हैं ना आए हुए हैं लड़ने के लिए, अल्लाह इनकी खातिर और अपने दीन की खातिर इनको रुसवा ना फरमा, मेरी वजह से जो है ना इनका काम खराब ना हो जाए, राइट। नूरुद्दीन जंगी ने तो कैसी दुआ मांगी थी कि फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो शेख, एक शेख थे, उनके ख्वाब में आए, उन्होंने फरमाया कि नूरुद्दीन जंगी से पूछो तुमने क्या दुआ मांगी थी, राइट, तो असबाब इख्तियार करते थे, फिर उसके बाद ऐसे दुआ मांगते थे, या ये कि असबाब है ही नहीं तो फिर जो है वो बस दुआ ही मांगते रहते थे क्योंकि असबाब ही नहीं है हाथ में। ठीक है, तो बात हमारे लिए जो जो टेक होम पॉइंट है ना यहाँ पर, वो ये है जो कि जो गलती हम कर रहे हैं वो, तो इस हिसाब से हमें भी बात समझनी चाहिए कि असबाब के पीछे पागल नहीं हो जाते थे, दीवाने नहीं हो जाते थे असबाब के पीछे, राइट। कि वो जो है वो 10 ईयर प्लानिंग, फिर 15 ईयर प्लानिंग, फिर 20 ईयर प्लानिंग, और फिर क्या होगा अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो क्या होगा, ये वो, यानी एज इफ के जो है वो आप ही ने इस दुनिया को चलाना है, दुनिया बनाई भी आपने और दुनिया को चलाना भी आपने और दुनिया को खत्म भी आपने ही करना है ना। अल्लाह ताला तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं भी कि नहीं है, राइट। बाप अम्मा अब्बा से जो है वो इस्लाम सीख लिया था, बाप दादा का दीन है, तो बस इस वजह से नमाजें पढ़ लेते हैं और वो ज़कात वगैरह दे लेते हैं अम्मा अब्बा की, आखिर को लेगेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई, तो इस वजह से इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं। अल्लाह कहाँ गया, अल्लाह ताला का रोल किधर गया, अल्लाह ताला की मोहब्बत किधर गई, अल्लाह ताला की खशियत किधर गई, ये सब कुछ नहीं होता। बस एक माँ बाप की लेगेसी है जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं, जिस तरह हिंदू अपने माँ बाप की लेगेसी के ऊपर अमल कर रहा है, यहूदी अपने माँ बाप की लेगेसी, यहूदी तो खैर उससे ज्यादा भी कर रहा होता है आजकल के जमाने में, एक ईसाई जो है वो अपने माँ बाप की लेगेसी के ऊपर चल रहा है ना, विरासत में मिला है ये दीन, तो उस वजह से अमल कर रहा है उसके ऊपर। हमारा भी यही हाल हो चुका है इस वक्त, ठीक है ना। तो इस वजह से हम समझते हैं कि हम ही नहीं सब कुछ करना है, हमने ही असबाब इख्तियार करना है, हमने ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, हमने ही जो है वो लोगों को उल्लू भी बनाना है, हमने हमने भी जो है वो झूठ भी बोलना है, हमने भी सब कुछ करना है, सब क्योंकि वी हैव टू डू एवरीथिंग। नो, ठीक है ना। तो वह मकरू मकरन वह मकरना मकरन, अल्लाह ताला भी प्लान कर रहे हैं, अल्लाह ताला ही इज नॉट सिटिंग बैक एंड रिलैक्सिंग, ही इज नॉट मतलब तमाशा नहीं देख रहे, बल्कि ही इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, फुली इन्वॉल्व इन एवरी थिंग। आज जो इस वक्त हमारी जिंदगी में हो रहा है, मेरी जिंदगी में हो रहा है, आपकी जिंदगी में हो रहा है, आपके मोहल्ले में हो रहा है, आपके खानदान में हो रहा है, आपके मुल्क में हो रहा है, आपकी दुनिया में हो रहा है, अल्लाह ताला इज फुली इन्वॉल्व, राइट। ये इस्तेहजार अगर हमें हासिल हो जाए ना कि अल्लाह ताला इज देयर एंड ही इज फुली इन्वॉल्व इन एवरी थिंग एंड ही इज कम्प्लीटली इन कंट्रोल, जैसे इकोनॉमिस्ट की जो उन्होंने हेडिंग लगाई थी ना दज्जाल के बारे में, एवरी थिंग इज अंडर कंट्रोल, ईमान वाला तो पहले दिन से एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल है ना, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इकोनॉमिस्ट वालों को तो अभी दज्जाल के बारे में समझ में आया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नो, वी ऑलरेडी बिलीव एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर नॉट द वन कंट्रोलिंग इट, अल्लाह इज द वन कंट्रोलिंग इट। फतिल्क बुयूतुहुम खावियतम बिमा ज़लमू, है ना। सो ये पड़े हैं उनके घर में ढेर होए हुए बसबब उनके जुल्म के, उनके इनकार के, है ना, सारे के सारे उनकी प्लानिंग भी खत्म हो गई, पड़े हुए ऑन दे मूव। इन नफीदा लिकल्ला आयतन लिकौमी यालम, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं, है ना, इसके अंदर एक निशानी है, या एक निशानी के अंदर सारी की सारी निशानियां शामिल हैं। किन लोगों के लिए? अंधों के लिए नहीं, बहरों के लिए नहीं, और जो है वो गाफिलों के लिए नहीं, बल्कि इल्म वालों के लिए, यानी जिनको के सही इल्म हासिल है, और जो के तफक्कुर, कहीं पे कौमी या तफक्करून फरमाया, कहीं पे कौमी यामलून फरमाया, कहीं पे कौमी यालम याकिलून फरमाया, अकल वालों के लिए, इल्म नाफ़ वालों के लिए इसके अंदर निशानी है। और जिसने कुछ लिख पढ़ के नहीं दिया सवाए जो है वो रटने, तोतू तोतू की तरह रटने की जिंदगी गुजारी है जिसने, उसको आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही, अभी भी लगे हुए अल्लाह की नाफरमानी कर करके अपने आप को बचाने के लिए, है ना। अल्लाह में कौमी यालमून में शामिल फरमा ले। वह अंजैनल लदीना आमनू व कानू यत्तकून, और हमने निजात दे दी उन लोगों को जो के मेरे नबी के ऊपर ईमान लेकर के आए, मेरे नबी के ऊपर, आमनू को जो है ना आज के दौर में बहुत जरूरी है, मेरे नबी के ऊपर ईमान लेकर के आए, ठीक है ना, यानी जो बात नबी ने कही उसको उन्होंने सही माना, जुबान से भी इकरार किया और दिल में भी उसकी तस्दीक करी, है ना। तो हम उन लोगों को निजात देते हैं जिन्होंने ऐसे किया, वह कानून यत्तकून, और उस ईमान लाने के बाद गुनाहों से बचते भी रहे, नाफरमानी की सोचों से बचते रहे, नाफरमानी के आमाल से बचते रहे, है ना, नाफरमानी के आइडियोलॉजी से बचते रहे। यत्तकून की इस वक्त कम अज कम ये तीन जुमले तो हमें लाजमन कहना चाहिए, क्योंकि वही गुनाह ना करो, गुनाह ना करो, समझ में नहीं आता कौन से गुनाह कराए भाई मैंने, पहले जमाने में होता था कि भाई गुनाह करते थे और उसके बाद बख्शवाने के लिए उमरा करके आ जाते थे, है ना। आज हम उमरा करने जो जाते हैं ना, हम बख्शवाने के लिए नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि गुनाह किए होंगे तो बख्शवाएंगे ना जाकर के। हम तो जाते हैं मजीद अपग्रेड होने के लिए, ठीक है ना। ये दौर, ये वो वाला दौर है। पुराना दौर था जिसमें जो है ना वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती थी। आज जो है ना वो बिल्ली ऐसी है कि वो चूहे को जो है वो जो खा रही होती है ना, तो कहती है मैं तो दुनिया से चूहों को खत्म कर रही हूँ, मैंने तो जो है वो यानी दुनिया के अंदर सफाई करी है ना। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मैंने तो चूहों को खत्म करके जो है ना, मैं तो नहनु मुस्लिहून में शामिल हो गई हूँ। अब मैं जो हज करने जा रही हूँ ना, अब तो मैं अल्लाह ताला मेरी पीठ ठूकेंगे, है ना, यानी मुझे शाबाशी देंगे, तब इसलिए मैं जा रही हूँ हज करने के लिए। तो आजकल की बिल्ली में और पुराने जमाने की बिल्ली में बड़ा फर्क है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वक्त खत्म हो चुका है क्लास का, इसलिए आपसे इजाजत। वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।